यमुना तेरा वनचारी यमुना यमुना तेरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा यमुना तेरा वनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा प्रभुपाद 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 थाय गौ पिमानंदे जय मोक्षपाद परमहंस प्रज्ञाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय अनंत कोटि वशन अरुंद की जय ग्रंथराशमद्भागवतम की निथाय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल ड्यूटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल ड्यूटीज ऑल ग्लोरिस्ट ऑल ग्लोरिस्ट ऑल ग्लोरिस्ट गुरु एंड गौरंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8-9 और श्लोक क्रमांक 29। मत प्राण रक्षणं अनंत पितुः वदश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं ऋतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यत् अवोचत् असत्विधिस्तु त्वाम् ईश्वरः मत्परः मत्अपरः अवतु कं हरामि। मत्प्राणरक्षणम् अनन्तम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वदश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं मृधातुं मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रहिग्रगृह्य यदोचत सत्विधिस्सु त्वामीश्वरो मदपरो अवतु कं हरामि। मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचद सत्विधित्सु त्वामीश्वरो मदपरोवतु कं हरामि। मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वदश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचत सत्विधित्सु स्वामीश्वरो मदपरोवतु कं हरामि। मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वदश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगह्यद्वोच्चतस्विदिषु स्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कुण्ठाम्। मत्प्राणरक्षणमनन्तविपितुर्विधश्च मन्ये सभृत्यर्षिवाक्यवृतं विधातुम् माता है प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्यर्षिवाक्यमृतं विधातुम् खड्गं प्रगह्य यदवोचदसद्विदित्सु स्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि। मत्प्राण रक्षणम्, मेरे जीवन की रक्षा करके, अनंत हे अनंत असीम दिव्य गुणों के आगार पितुः मेरे पिता का, वदह वदह च तथा वद मन्ने मानता हूँ, स्वभृत्य आपके अनन्य दासों का, ऋषि वाक्यम तथा नारद मुनि के शब्दों को, ऋतम सत्य विधातुम सिद्ध करने के लिए, खड्गम तलवार प्रगृह्य हाथ में धारण करके, यत चूंकि अवोचत मेरे पिता ने कहा, असत विधित सु बड़े ही अपवित्र ढंग से कर्म करने की इच्छा से, त्वाम तुमको ईश्वरः कोई परम नियामक, मत अपरः मेरी अपेक्षा दूसरा कोई, अवतु बचा ले कम तुम्हारा सिर, हरामि अब मैं छिन्न कर दूंगा। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे भगवान, हे दिव्य गुणों के असीम आगार, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वह तुम्हें बचाएगा। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। अतएव मैं सोच रहा हूं कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने दोनों ही में आपने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए ही कर्म किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य, भगवत गीता 9वें अध्याय 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। भगवान निस्संदेह समदर्शी है, न तो कोई उनका मित्र है न कोई उनका शत्रु, किंतु मनुष्य भगवान से लाभ की कामना करते हैं, अतएव भगवान उन्हें देने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विभिन्न जीवों के उच्च तथा निम्न पद उनकी इच्छाओं के अनुसार होते हैं, क्योंकि भगवान समदर्शी होने के कारण हर एक की इच्छा पूर्ति करते हैं। हिरण्यकशिपु का वध तथा प्रहलाद महाराज की रक्षा का होना भी परम नियंता के कार्यकलापों के इसी नियम के अनुसार है। जब प्रहलाद की माता कयाधु नारद मुनि के संरक्षण में थी तो उन्होंने अपने पुत्र की शत्रु से रक्षा के लिए प्रार्थना भी की। और तब नारद मुनि ने आश्वासन दिया कि प्रह्लाद महाराज की शत्रु के हाथों से सदैव रक्षा होती रहेगी। अतः जब हिरण्यकशिपु प्रह्लाद का वध करने जा रहा था तो भगवान ने भगवद गीता में दिए गए अपने वचन की पूर्ति करने के लिए कि कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति तथा नारद के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रह्लाद महाराज को बचा लिया। भगवान एक करने से कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु का वध तथा प्रह्लाद की रक्षा का एक साथ कार्य भगवान के भक्त की सत्यता तथा भगवान की स्वामी भक्ति को ही सिद्ध करने के लिए किए गए। भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को कुछ भी भगवान स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता भगवान को, क्योंकि उनकी विभिन्न शक्तियां सब कुछ करती हैं। परा से शक्तिर विविधैव शूरियते। भगवान की विविध शक्तियां हैं जिनके द्वारा सब कुछ संपन्न होता है। अतएव जब वे स्वयं कुछ करते हैं तो वह केवल अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही होता है। भगवान भक्तवत्सल कहलाते हैं क्योंकि वे अपने सेवक पर अत्यधिक कृपा करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर प्रह्लाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को शांत कर रहे हैं अपने सुंदर स्तुतियों के माध्यम से, और बता रहे हैं कि भगवान आपकी जो कार्य आपकी जो गतिविधियां हैं वो किस तरह सिर्फ एक उद्देश्य के लिए न होकर उसमें बहुत सारे उद्देश्य अंतर्भूत रहते हैं। आप एक ही कार्य से जो है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, बहुत सारे कार्य कर जाते हैं। तो इस प्रसंग में प्रह्लाद महाराज बोल रहे हैं कि आपका ये जो नरसिंह अवतार है, ये आप जो प्रकट कराए हैं, ये न केवल सिर्फ मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपने प्रकट हुए हैं, और न केवल सिर्फ अपने मेरे पिता के वध के लिए आप प्रकट हुए हैं, बल्कि इसके पीछे आपका एक और उद्देश्य भी है जो कि अपने भक्तों के वचन को सत्य स्थापित करना है। तो इस प्रसंग में वो बोलते हैं कि न च इदम त्वया मद अनुग्रहार्थम किंतु अन्य अर्थ इतम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि प्रह्लाद महाराज ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरे उद्धार के लिए, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए ही आप प्रकट हुए, ऐसी बात नहीं है, किंतु अन्य अर्थम, कुछ और भी अर्थ है। तो क्या अर्थ है? तो बोलते स्वभृत्य ऋषि नारद तस्य ऋतम सत्यम। उनके जो आपके जो स्वभृत्य है, आपके जो दास है नारद, ऋषि नारद, तस्य ऋतम, उनकी वाणी को सत्य स्थापित करने हेतु आप प्रकट हुए हैं। सत्यम कर्तुम यहम अति, ऐसे मुझे लगता है, मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे उद्धार के लिए आप प्रकट हुए हैं या भक्तों की रक्षा करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, ऐसे नहीं मानता हूं। अगर मैं ऐसे मानूंगा तो मैं अपने आप को बड़ा भक्त मान रहा हूं। अगर मैं अपने आप को भक्त मान रहा हूं और भगवान भक्तों की रक्षा करने आते हैं, इसका मतलब भगवान मेरे लिए रक्षा करने आए तो साबित हो गया कि मैं कोई बड़ा भक्त हो गया। इसलिए बोल रहे हैं कि स्वभृत्य ऋषि नारदस्तस्य वाक्यम वृत्तम विधातुम, नारद ऋषि के वाक्य को सत्य करने के लिए आप प्रकट होते हैं, ऐसे मैं मानता हूं, अहम मन्ने। हालांकि इसके पूर्व अध्याय में पहले ही सुखदेव गोस्वामी बोल चुके हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम भूतेषु च अखिलेषु आत्मनः, के भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए ही प्रकट होते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने भी पूछा था प्रहलाद महाराज को कि कहाँ है बताओ तुम्हारा भगवान, तो बोले कि व्याप्तिम च सर्वभूतेषु अखिलेषु आत्मना च आत्मना, के सर्व सब भूतों में, सब प्राणी मात्रों में, सब जगह पे जो है वो उपस्थित है। ये प्रहलाद महाराज का वाक्य था और उसी वाक्य को सत्य करने के लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए थे, है कि नहीं? तो फिर प्रहलाद महाराज क्यों ऐसे बोल रहे कि नहीं नहीं वो बात नहीं है कि मेरी रक्षा के लिए आए, वो बोल रहे हैं कि मुझसे भी बढ़कर कोई भक्त है और अपने आप को भक्त नहीं मान रहे, तो बोल रहे कि नारद मुनि के वाक्यों को सत्य करने के लिए आप आए। तो ये पहला गुण हम देखते हैं कि भक्त कैसे दैन्य होते हैं। जैसे महाभारत में व्यासदेव जी का एक कथन आता है जिसमें वो बोल रहे हैं, अपने मत प्रकट कर रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहा हूं कि आइए पढ़िए इस जो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जो आप लोगों के लिए मैंने रचना की है वो आपके कल्याण के लिए, आप पढ़िए इसको, आप इसको स्वीकार कीजिए, मानिए, इसके अनुसार आप आचरण कीजिए। लेकिन व्यासदेव के उस उपदेश को या उस बुलावे को कोई सुन नहीं रहा है। इतने सारे वेद पुराण ग्रंथ, हम बद्रीनाथ में जाएंगे तो हमें दिखाई देगा वहां बहुत बड़ा विशाल पहाड़ चट्टान के रूप में है। कहा जाता है कि जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे थे वो चट्टान के रूप में अभी भी है, उपस्थित हो गए है वहां पर, विशाल ग्रंथ का समुदाय है पूरा। तो बोल रहे इतने सारे मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, आप पढ़िए इसको, तो लोग ध्यान नहीं दे रहे कलयुग के लोग। तो फिर व्यासदेव जी सोच सकते थे कि हाँ मंदा सुमंद मंद मतयो, कलयुग में मंद भागी लोग है, बुद्धि मंद है, ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे, दुर्भागी लोग है, ऐसे सोच सकते थे वे। तो वो ऐसे नहीं सोचे, बोले कि शायद कहीं ना कहीं मेरे लिखने में, मेरे रचना करने में कुछ कमी रह गई हो, है ना। तो हमारे प्रचार के दरम्यान भी कई बार हम भक्तों को बताते हैं कि माला जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, बहुत कुछ उपदेश करते हैं, कभी कभी फ्री में भी भगवत गीता दे देते हैं या बहुत उनको प्रसाद देते हैं, लेकिन कोई आते नहीं मंदिर में। तो हमें लगता है कि चलो वो तो छोड़ दो, उसका थोड़ा जवानी कम है, है ना। तो व्यासदेव जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि हमें सोचना है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, और ऐसे जब भाव रहेगा नम्रता का तब नारद मुनि वहां प्रकट होंगे, तब गुरु का आदेश वहां प्रकट होगा। तो वही भाव यहां पर, जैसे कमलोचन पुव ने परसों कहा था कि ये दैन्य भाव प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने, और वो बोल रहे हैं कि किस तरह आप सिर्फ मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए ही आते हैं, एक कार्य नहीं बल्कि असुरों का, जो मेरे पिता असुर है उनका भी वध करते हैं आप एक ही समय में, दोनों कार्य करते हैं। तो पिता का वध करना और मेरे प्राणों की रक्षा करना, तद उभयम, ये दोनों कार्य आपका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य के लिए है कि नारद मुनि स्वभृत्य नारद का वाक्य जो है और ऋतम विधातुम, उनको सत्य करने के लिए। तो नारद मुनि का क्या वाक्य था ऐसा, कौन सा वचन था जिसके बारे में प्रहलाद महाराज यहां बोल रहे हैं? तो कहा जाता है कि जब कयाधो, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए तो उनके पेट में जो हिरण्यकशिपु का गर्भ था, प्रहलाद महाराज जब गर्भ थे, तो इंद्र को बड़ा चिंता हुई। इंद्र बोले कि अस्यास्तस्या जटरे, उनके उसके जटर में विष है, यानी विष का जो अंश है, यानी हिरण्यकशिपु एक असुर है, असुर का ही अंश जो उसके गर्भ में है, तो आगे चलकर ये भी असुर बनेगा, जैसे सांप का बच्चा जो है सांप ही बनेगा। तो इसलिए इंद्र जो है कयाधो को हानि पहुंचाने जा रहा था। उस समय नारद मुनि ने उन्हें रोका और कहा कि नहीं, ये अनंत अचुर है, अनुचर है, जो भगवान अनंत है उनके अनुचर है, इसलिए आप इसको जो है कुछ मत करो। तो नारद मुनि ने वचन दिया कयाधो को उस समय कि आप चिंता मत करो कि आपके पुत्र की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। ये वचन नारद मुनि ने कयाधो को दिया था, और ये वचन जब से दिया था तभी से भगवान ने योजना बना लिया, तभी से भगवान खंभे में प्रकट हो गए थे। क्योंकि ऐसे नहीं कि हिरण्यकशिपु ने जब आह्वान किया तब खंभे में से भगवान प्रकट हुए, एक चीज है, लेकिन साथ में हमें जानना चाहिए कि भगवान जब भक्त के अधीन है, भक्त वशीभूत है, तो जैसे ही नारद मुनि ने वचन दिया था उसी समय भगवान ने प्रहलाद की रक्षा का योजना बना लिया था। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं यहां पर कि मुझे एक ही चीज दिखता है कि आप, हालांकि सब भूतों में, टीका में आचार्य लोग बताते हैं कि एवं भगवत सर्वत्र साम्य, प्रभुपाद जी यहां बोल रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्यस्ति न प्रिया, कि हालांकि भगवान सभी जीवों के प्रति समान है, कहीं द्वेष नहीं करते किसी के प्रति, और कोई प्रिय भी नहीं है उन्हें, है ना, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि भजंती तुम माम भक्ता, ये भजंती तुम माम भक्ता मैते मैते तेषु चाप्य, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। तो इसका हम क्या समझेंगे, कि भगवान पक्षपात करते हैं समझेंगे या नहीं करते हैं समझेंगे? एक तरफ से भगवान बोल रहे समोहम, मैं सब भूतों में समान हूं, और दूसरे दूसरे विरुद्ध पक्ष में बोल रहे कि नहीं, जो मेरे भजन करते मैं उनका हूं, है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने निर्णय कर लिया, जय श्री राधा गोपिना गिरधारी की जय, जगन्नाथ फल। तो प्रहलाद महाराज ने निर्णय कर लिया कि सर्वत्र साम्यपि भक्त वश्यत्वम, हालांकि सब जीवों में समान है, वो सबके प्रति समान है, समान समोहम है, लेकिन फिर भी भक्त वशित्व है उनके अंदर, भक्तों के वशीभूत होना उनका एक गुण है। ये मैंने वश्यत्वम विशिष्टत्व, ये विशेष गुण है, इति ज्ञापितुम, ये मैंने जान लिया हूं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, एक चीज जान लिया हूं कि मैं भगवान जो है भक्तों के वशीभूत है। कैसे? तो हम देखेंगे, जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो परीक्षित महाराज का क्या संबंध है भगवान से? कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उनका संबंध पांडवों से है, पांडव उनके भक्त थे, परीक्षित महाराज तो गर्भ में है, लेकिन फिर भी भक्तों के वंश होने के कारण, परीक्षित महाराज पांडवों के वंश होने के कारण, और स्वयं उत्तरा जी अपने अन्य जो पांडव उपस्थित होने पर भी कृष्ण के सीधे शरण ली उन्होंने, हालांकि वहां पांडव उपस्थित थे उस समय, तो वो चाहे तो पांडवों के आश्रम में जा सकती थी, लेकिन उसने कृष्ण का आश्रय लिया। तो कृष्ण ने जैसे ही उत्तरा ने आश्रय लिया कृष्ण का, तो कृष्ण इतने उतावील हो गए कि आज तक असुरों को मारने में उन्होंने कभी भी दो हाथों का प्रयोग नहीं किया था। तो जब गर्भ में गए तो दोनों हाथों से, वो एक हाथ से तो गदा चलाने लगे और दूसरे हाथ से चक्र चलाने लगे, भागवत में वो बताते हैं ऐसे, भागवत में ब्राह्मयंतम गदा मुहो, दोनों हाथ से गदा जो है बार बार चलाने लगे ऐसे उधर इधर, कहीं भी ब्रह्मास्त्र का असर नहीं पड़े परीक्षित पर, और आत चक्र यानी वो अपने चक्रों को भी चलाने लगे, उनके डर था शायद गदा में जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा, कहीं कम पड़ जाएगा, तो चक्र भी चलाने लगे। तो ये भक्त वत्सलता है भगवान की। और भगवान हमेशा एक तो गुण हुआ कि भगवान के जो आश्रय लेते हैं उनकी भगवान रक्षा करते ही है, और साथ में जो भगवान ये भी देखते हैं कि हमारे भक्त ने कहीं पर कुछ आदेश या कोई उपदेश वचन तो नहीं दिया है किसी को, तो उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं। जैसे इस प्रसंग में हिरण्यकशिपु के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था कि तुम्हारी जो है दिन में न रात में किसी मनुष्य के नहीं, किसी पशु से नहीं, न जल में न स्थल में, बहुत सारे वरदान दिए थे। तो उस वरदान को सम्मान देते हुए, उस वरदान को स्थान में रखते हुए भगवान ने नरसिंहदेव को इस प्रकार से मारा कि ब्रह्मा जी के वचन भी पूरे हो गए। न जल में, न स्थल में, न सूर्य में, न संध्या समय में, न सूर्योदय में, न अस्त्र, न शस्त्र, न मनुष्य, न प्राणी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी का सम्मान किया। और दूसरे प्रकार से, दूसरी तरफ यह भी साबित कर दिया कि प्रहलाद ने बोले सब जगह पे है, तो सब जगह में तो खंभे से भी प्रकट हो गए, है ना। हम तो अल्टर में देखते हैं भगवान को, लेकिन खंभे में अभी तक हमने देखा नहीं, लेकिन प्रहलाद ने कहा है इसमें प्रकट हो गए। तो इस तरह से दोनों कार्य भगवान ने किए। और समय समय पर भगवान जो है, महाभारत में हम बहुत सारे प्रसंग देखेंगे जिसमें अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में मारे गए तो उन्हें अर्जुन को पता चला कि एक निहत्ते बालक पर, एक जो निष्पाप बालक पर कौरवों ने क्रूरता से हत्या कर दी है, उसको घेर कर। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कल संध्या समय तक जयद्रथ को नहीं मारूंगा, तो अग्नि चिता पे जाऊंगा, अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो युद्ध का बहुत प्रसंग बड़ा घनघोर था। हम देखेंगे महाभारत में कि कौरवों ने चारों ओर से घेर लिया था अर्जुन को, कहीं भी अर्जुन को जो है जयद्रथ दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह से छुपा लिया था जयद्रथ को कि अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, संध्या हो गई, सूरज ढल गई। और जैसे संध्या सूरज अस्त हो गया तो कौरवों ने बड़ा पार्टी मनाया, बोले अभी देखो अभी हमारी जीत हो गई, क्योंकि जब अर्जुन मारा जाएगा तो कौरवों की जीत हो गई। तो उन्हें पता नहीं था इसके पीछे क्या रहस्य था। तो अर्जुन बड़े चिंतित थे क्योंकि वो अपने प्रतिज्ञा से बद्ध थे, वचनबद्ध। तो वे अस्त्र छोड़कर अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी कर ली थी, उतने में जयद्रथ सामने आए, क्योंकि सूर्यास्त हो गया तो जयद्रथ भी आकर अपना मुखड़ा दिखाने लगा, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहां पर भगवान ने पहले ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए चक्र सुदर्शन के द्वारा सूरज को ढक लिया था। मध्यान्ह का समय था, जैसे जयद्रथ ये भ्रमित होकर के सूर्यास्त हो गया है, सामने आया, तो भगवान ने अपने चक्र हटाया, अर्जुन को बोला देखो ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूरज, अभी भी आकर है, अभी भी दिन है, मारो, तुम्हारा शत्रु सामने है। तो मान लो उस समय पांडवों का क्या स्थिति, कौरवों का क्या स्थिति हुआ रहेगा, चेहरा उनका पीला हुआ या काला हुआ, तो उसी समय पता चला होगा। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य कराते हैं। हालांकि अर्जुन ने भगवान को पूछकर नहीं प्रतिज्ञा की थी, लेकिन फिर भी अर्जुन का भगवान से संबंध है, एक भक्त होने के कारण भगवान की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने भक्तों के वाणी को सत्य करना। हमेशा भगवान जो अपने भक्तों को यश देते हैं, इसको कहते हैं भक्त वशित्व, भक्त के वशीभूत है पूरी तरह। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को बड़ी ग्लानि हुई, उन्होंने कहा कि धर्म ही क्या, जिस धर्म के कारण इतनी सारी हिंसा हो गई, लाखों करोड़ों जीव मारे गए, पशु पक्षी प्राणी मारे गए, कितनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई, और राज्य क्या काम का, ऐसा राज्य का भोग क्या करना है। जिस तरह से अर्जुन को शोक हुआ था उसी तरह युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज को हुआ था। तो वहां व्यास देव थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कुलगुरु थे, सब लोग थे, विद्वान पुरुष थे बड़े बड़े, सब लोग ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को शांत नहीं कर पाए। उन्हें मन में पश्चाताप हो रहा था कि ऐसा धर्म का युद्ध ही क्या धर्म है, वो धर्म युद्ध क्या धर्म है जिसके कारण हिंसा हो। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझाए। आप सोचिए, जिन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया, जिन्होंने शक्तावेश के अवतार के रूप में, व्यासदेव के रूप में प्रकट होकर वेद पुराण उपनिषद इतने सारे ग्रंथों की रचना की, और सूर्यदेव विवस्वान तक को भगवत गीता, ऐसे नहीं कि अभी, युगों युगों से ये ज्ञान जो भगवान बांटते हैं, ज्ञान के सागर है, षड ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य उनका ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी पुरुष आदि पुरुष भगवान स्वयं सामने खड़े हैं और वो उनको समझाने में असमर्थ है, उनको विश्वास दिलाने में कि नहीं, तुम्हारा जो युद्ध है वो पूरी तरह धर्म और नीति के ऊपर आधारित है, इसलिए तुम शोक मत करो। यह समझाने में, चाहे तो हृदय में, चाहे तो वो उनको विश्वास दिला सकते थे, हृदय में भी भगवान है, लेकिन फिर भी उनके इतने समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे। तो आखिर में भगवान जो है कृष्ण, उनको व्यास भीष्मदेव के पास ले आए। वह भीष्मदेव जो अधर्म के पक्ष में लड़े थे, वह भीष्मदेव जो द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय मौन बैठे थे, है ना, उनसे उपदेश करा रहे भगवान। सोच सकते हैं हम क्या रहस्य होगा। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं जो कार्य कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, वो कार्य मेरा भक्त कर सकता है। जिनका उद्धार या जिनको सांत्वना मैं नहीं दे सकता, वो कार्य मेरा भक्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया, रूप गोस्वामी बुद्धेश अमृत में कहते हैं कि भक्ति भगवान के भक्त के द्वारा ही दी जाती है, भगवान नहीं देते भक्ति, भगवान नहीं देते भक्ति, भगवान के भक्त ही देते हैं। तो भक्त की महिमा भगवान बढ़ाते हैं। भीष्मदेव के पास ले आने का उनका एकमात्र मंतव्य यही था कि वो बताना चाहते थे कि जो कार्य मैं नहीं कर सकता, मेरे भक्त भीष्मदेव कर सकते हैं। और भीष्मदेव के उपदेश जो है वो युधिष्ठिर महाराज फिर बाद में शांत हो गए। तो इस तरह से समय समय पर भगवान हमेशा अपने भक्तों की स्तुति और ऐश्वर्य को बढ़ाते रहते हैं। जय विजय के प्रसंग में भी एक विचार करने योग्य बात यह है कि जब चार कुमार आए थे द्वार पे, वैकुंठ के द्वार पर, तो जय विजय ने उन्हें रोका था। तो अभी हमें से देखते हैं कि हम सभी भक्त लोग यहाँ साधना भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं, तो हम भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं, तो हमें अपने सेवा में हमेशा सतर्क रहना चाहिए, दक्ष रहना चाहिए। हम रहते भी हैं, और इसी तरह जय और विजय भी अपने सेवा में दक्ष थे। उनका कार्य था, कर्तव्य था कि अज्ञात व्यक्ति को द्वार, वैकुंठ के द्वार में अंदर प्रवेश न दे, है ना। और चार कुमार अज्ञात व्यक्ति थे, वो भक्त भी नहीं थे, ब्रह्मवादी थे, और उन्हें ऐसी इच्छा हुई, चलो देखेंगे भगवान का वैकुंठ, लोग तो सुने हैं हमने, देख लेंगे क्या है। उनके उनके पास यौगिक शक्ति थी, वो गए थे वैकुंठ के द्वार पर, और द्वारपाल ने कि उनका उनका ड्यूटी है, वहाँ सिक्योरिटी का सेवा दे रहे, तो वो अपना कार्य करेंगे। उन्होंने रोका, और फिर चार कुमारों को बड़ा क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दिया, और उन्होंने शाप दिया भगवान वहां से, जैसे यहाँ हल्ला गुल्ला चल रहा है सुने, तो आए यहाँ पर द्वारपाल द्वार पे, और उन्होंने देखा कि चार छोटे से ब्राह्मण हमारे द्वारपालों को शाप दे रहे, दंड दे रहे। तो क्योंकि चार कुमार ब्राह्मण है, तो भगवान ने एक ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए, ब्राह्मणों के वश में होने के कारण, ब्राह्मण नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताच, भगवान का एक नाम ब्राह्मण्य देव है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इन्हें मत छाप दो, इन्हें मत छाप दो, इनकी जो गलती है मैं मानता हूं, मेरा है, मेरा मेरी गलती है, मेरे भृत्य या दास का सेवक का जो भी गलती है वो स्वामी को अधिकार होता है, इसलिए आप मुझे दंड दो, मुझे दंड दो, है ना। तो चार कुमारों को भी संशय आया कि व्यक्ति ने तो गलती नहीं किया लेकिन ये क्षमा मांग रहा है, इसका मतलब जरूर हम कहीं गलती है, हमने कहीं पर गलती किया है। लिखते हैं आचार्य टीका में, लिखते हैं ये बात, चार कुमार ऐसे सोचे कि हो ना हो हम हमसे कुछ गलती हुई है। अब देखिए, अगर कहीं कभी कभी क्या होता है भक्तों में, अगर सामने वाला पहले ही माफी मांग लेता है तो हमें पश्चाताप होता है, अरे गलती तो मेरी है ना। कभी कभी रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा धक्का लग जाता है, क्रैश हो जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो यह सोच करके वो आदमी ज्यादा चिल्लाएगा तो पहले चिल्लाता है, क्या दिखता नहीं तुझे, ताकि वो शांत हो जाए, है ना। हमारा आवाज बढ़ाने से उसे लगता है कि सामने वाला आदमी वो अपना गलती मान लेगा, हालांकि गलती हमारी है ना। तो लेकिन बाद में पश्चाताप होता है, अरे बेचारा वो चुपचाप हो गया, माफी मांग रहा है, फिर से गलती तो मैंने किया लेकिन वो माफी मांग रहा है। तो क्षमा याचना करने से, भृगु मुनि के प्रसंग में भी ऐसे हुआ, जब भृगु मुनि नैमिषारण्य ऋषि के विचार विमर्श पर गए थे कि सृष्टि के परम नियंता कौन है, विष्णु जी के पास गए थे और सबकी परीक्षा ली उन्होंने, शिव जी ब्रह्मा जी की, और जाकर विष्णु जी की सीधे जो है उनके छाती में लात मार दी उन्होंने, तो जाके वो विष्णु भगवान उठकर उनसे माफी मांगने लगे, बोले आपके पैर को कहीं वेदना तो नहीं हुई, कष्ट तो नहीं हुआ, आपके इतने कोमल पैर, आप मेरा छाती कठोर। तो भृगु मुनि बड़ा पश्चाताप हुआ, बोले कितना मैं कितना कठिन अपराध किया हूं। तो ये भाव यहां पर है, तो चार कुमारों को ऐसे पश्चाताप हुआ। फिर वो सोचने लगे कि हमने बड़ा गलती किया कि इन दोनों को शाप देकर किस तरह से इनका उद्धार किया जाए, जल्दी से, अभी शाप तो दे दिया है लेकिन जल्दी से जल्दी उनको फिर से भौतिक जगत से वापस आध्यात्मिक जगत में बुलाने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने विचार किया, तो पुराणों में एक कथा आती है कि वे स्वयं चारों प्रहलाद के रूप में, चारों एक होकर प्रहलाद के रूप में प्रकट हुए, पुराणों में एक कथा है, पुराणों में कथा है कि वो चार कुमारी जो है जय और विजय को, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भौतिक जगत से उद्धार करने के लिए, शीघ्र उद्धार करने के लिए स्वयं वो प्रहलाद के रूप में प्रकट हुए, यह भी एक कथा आती है पुराणों में। और यहां पर उन्होंने एक तो ब्राह्मणों के सम्मान और उनके वचनों की रक्षा करके वो अपने दोनों सेवकों को, द्वारपालों को भेज दिया भौतिक जगत में, और साथ में वहां ब्राह्मणों के सम्मान और वचन को भी उन्होंने कायम रखा। तो दोनों कार्य भगवान करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, और दो भक्त है दो तो दोनों को भगवान कैसे संतुष्ट करना है भी भगवान को पता है। तो इस तरह से यहां पर हिरण्यकशिपु का वध और प्रहलाद महाराज को दर्शन देना और साथ में नारद मुनि के वचनों को सिद्ध करना, ऐसे अनेक कार्य जो है भगवान एक ही साथ कर बैठते हैं, ये भगवान की एक विशेष गुण है। इसके माध्यम से भगवान, एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते थे। जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वे अपने भक्तों के माध्यम से करा सकते हैं। ध्रुव महाराज जंगल में गए, तपस्या किए और उनको भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन हुए और नित्य लोक ध्रुव लोक की प्राप्ति भी हुई। तो अब देखिए कि हमें से तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है क्योंकि हमें अभी तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ है। और ऐसे कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है, एक बार हरिनाम लेता है तो उनके सारे दोष कलमश दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए ध्रुव महाराज ने, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका जो भाई है सौतेला भाई उत्तम, उनको यक्षों ने मारा है, जंगल में यक्षों ने मार डाला, यह जब सुना उन्होंने तो वे स्वयं सारे यक्ष वंशों का नाश करने के लिए क्रोधित हो गए। सारे यक्ष वंशों को नाश करने के लिए बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो गया। और फिर वहां पर स्वयं स्वयंभू मनु को, ब्रह्मा जी को आना पड़ा ध्रुव महाराज को शांत करने के लिए। कुबेर भी आए। तो इस तरह से धृतराष्ट्र के संबंध में भी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने पूरी भगवद गीता सुनी थी, और जब विराट रूप दिखाई दिया था, भगवान जब हस्तिनापुर में दूत बनकर आए थे और संधि करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर विराट राज्य में उनका वनवास के जो अवधि तक समाप्त होने जा रही थी, अब सब राजाओं ने मिलकर निर्णय लिया था कि युद्ध की तैयारी की जाए और हमारा राज्य जो है फिर से लिया जाए। और इस विचार विमर्श पर भगवान कृष्ण और बलराम के सामने एक प्रस्ताव रख दिया गया था कि वनवास का जो अवधि है कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया जाए, ताकि युद्ध की तैयारी करने में कुछ समय मिले। इस विचार विमर्श पर कृष्ण और बलराम दोनों राजी हो गए। और फिर बाद में यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने विचार विमर्श कर कर एक हल निकाला, एक निर्णय लिया कि क्यों ना हो हम इस युद्ध को रोक दिया जाए, हम संधि कर लेंगे, मिलकर सलाह मशवरा विचार विमर्श करके समझौता कर लेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना संदेश भेजना चाहते थे कौरवों के पास कि हम आपसे जो है सलाह मशवरा या समझौता करना चाहते हैं, और इसके लिए भगवान को चुना गया। सब राजाओं के, पांडव पक्षों के राजा लोग सब ने कृष्ण को चुन लिया था कि यह व्यक्ति जो है जाकर दूत के रूप में जाकर संदेश प्रस्तुत करेगा। और जब वहां गए थे तो युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा हीरे जवाहरित माणिक्य और बहुत सारे रत्नों के महल उनके लिए, गेस्ट हाउस जैसे लाइफ मेंबर लोगों के लिए बनाते हैं, उससे भी बढ़कर कहीं गुना। तो यहां पर आए, और लेकिन वहां पर भगवान गए विदुर के घर में। तो हम ये सुनते आए अभी तक के रूखा शाख विदुर घर खाए, दुर्योधन का भोग ना खाए, के भगवान छप्पन भोग नहीं खाए लेकिन रूखा सूखा शाख खाए विदुर के घर में। तो एक संशय आया हमारे मन में कि विदुर जी तो हस्तिनापुर के बड़े मंत्री थे, सम्राट, हस्तिनापुर का राज्य पूरे विश्व में फैला था, और एक मंत्री होकर कैसे वो गरीब हो सकते हैं कि उसके घर में रूखा शाख मिलेगा, है ना। और स्वयं भगवान रथ लेकर गए थे उनके घर में, और विदुर जी उनके हाथ पकड़कर रथ से उतराए थे, फिर उनको विदा किए थे भोजन वगैरह खिलाकर। तो हमें ऐसे लगा कि विदुर जी कोई गरीब नहीं थे, वो मंत्री होने के कारण बहुत अमीर थे, और सिर्फ उनके प्रेम के कारण भगवान वहां गए थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ गरीब होने के कारण भगवान गए थे। हाँ, भगवान है, अकिंचन गोचर है भगवान, लेकिन उससे भी बढ़कर भगवान भक्त वत्सल है। यो मैं भक्त्या प्रयश्यति अष्टनामी प्रयतात्मन, जो भक्ति के द्वारा, गरीब श्रीमंत है बाह्य कारण है, अगर अमीर है भक्ति नहीं है तो भगवान वहां भी नहीं जाते, अगर गरीब भी है भक्ति भी नहीं तो भी भगवान नहीं जाते। क्योंकि किसी किसी गरीबी का भी अहंकार होता है। कल के बता रहे थे कि दादर में, प्रभु जी बता रहे थे शायद, दादर में कोई एक भिखारी है, जब उसकी बेटी की शादी हुई तो उसने अपने जमाई को दहेज में कहा कि तुम जो ब्रिज का, दादर का ब्रिज का उस तरफ का हिस्सा है, वो एरिया वो तुम ले लो भीख मांगने के लिए दहेज में। तो आप बता रहे थे प्रभु जी। तो गरीब अमीर होना ये कोई कारण नहीं है कि सिर्फ गरीब होने से ही हमको भगवान प्राप्ति होंगे, अमीर होने से भी, भक्ति होने से भगवान प्राप्त होगी। तो इसलिए भक्ति हमें कैसे प्राप्त हो उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। दक्ष महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ, विशाल यज्ञ किया था, बहुत बड़े धार्मिक थे, सृष्टि के प्रजापति हो आदि जीवों में एक है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था नहीं थी, वैष्णव के प्रति अपराध की भावना थी, शिवजी के प्रति, उनका पूरा यज्ञ जो है दक्ष का नष्ट हो गया। नृग राजा, देखते हैं कि कितने बड़े दानी थे वो, ब्राह्मणों को लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गाय और जमीन भूमि गांव दान में देते थे। लेकिन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, वो मूल जो स्तंभ है, उसको आधार में केंद्र में नहीं रखे थे, इसलिए उनको चिपकली बनना पड़ा। धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने से रक्षा होती है, लेकिन वो धर्म किस आधार पर टिकी है ये हमको जानना चाहिए। इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव जी को डांटा, फटकारा, वो बोले कि जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासता, आपने धर्म की बहुत व्याख्या की, वो धर्म ये धर्म बहुत पुराण शास्त्र कर्मकांड वो कांड ये कांड बहुत सारे विधि लिखे, लेकिन सारे धर्म सारे संस्कृति सारे समाज को एक इकट्ठा करके एकजुट बना के रखने का जो मुख्य केंद्र बिंदु है भगवान, उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, उसका वर्णन करो। हम देखते हैं आज के समाज में, क्योंकि भागवत एक ऐसा चीज नहीं है कि भागवत पढ़ने से सब लोग बाबा जी बन जाएंगे सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा है तो फिर भागवत गलत है, बिल्कुल मत पढ़िए। भागवत गृहस्थों को गृहस्थ कार्य कैसे करना है वो सिखाता है। धर्म मतलब धारयति इति धर्म, धर्म है ना धारण करना सिखाता है हमको, धारण है ना अपने आप को बचा के कैसे रखना है सिखाता है। हम बुरे काम कर रहे हैं तो धर्म हमें बचाएगा, भाई ये गलत काम है ये नहीं करना है। तो भागवत वो धर्म है कि हमको गलत काम क्या है, अच्छे काम क्या है, क्या करना है क्या नहीं, और धर्म का सिद्धांत क्या है, धर्म का केंद्र बिंदु क्या है, ये हमें भागवत सिखाता है। गृहस्थ है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, सन्यासी है, बाबा जी है, भिखारी है, अमीर है, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन भागवत सबके लिए है। हर एक को अपना अपना कर्तव्य कैसे करना है, अपना धर्म करते हुए भगवान के आदेशों का पालन कैसे करना है, यह भागवत सिखाता है। यह नहीं कि भागवत पढ़ के सब लोग बाल मंडवाकर जो है ब्रह्मचारी बने या सन्यासी बने या बाबा या तो इसलिए कहा गया है कि तीन प्रकार के लोग होते हैं भागवत में कहा गया है कि एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ धन का संग्रह करते रहते, बहुत चाहिए चाहिए चाहिए, उनको लगता है कि धन एकत्र करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि नहीं, धन नहीं चाहिए, शास्त्र में लिखा है वैराग्य होना चाहिए, जितना त्याग करे त्याग दो, कुछ भी मिले त्याग दो, नहीं चाहिए। क्यों? उनको लगता है कि त्याग करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। और तीसरा प्रकार का व्यक्ति होता है कि नहीं, जो व्यक्ति त्याग कर रहा है वो भी इसलिए कर रहा है कि त्याग के द्वारा उसको सुख मिलेगा, और जो व्यक्ति संग्रह कर रहा है तो उसकी धारणा यह है कि संग्रह करने से मैं सुखी होऊंगा। तो तीसरा व्यक्ति सोचता है नहीं, मुझे त्याग भी नहीं करना है ना भोग भी करना है, मुझे तो आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि सब लोग आनंद के लिए कर रहे हैं। तो आनंद कहां पर है? श्रीमद् भागवतम में है। भागवत वो आनंद प्रदान करता है, भागवत सिखाता है कि मनुष्य जीवन को कैसे बैलेंस में समतोल में रखकर भगवान के साथ संबंध स्थापित करके जो शाश्वत आनंद है उसको प्राप्त किया जाए, वो भागवत विधि है। तो इसलिए भागवत कहा गया कि भागवता नाम पुराणम, भागवत पुराण, भागवत यानी भक्तों का जो पुराण है, भक्तों के बारे में जो पुराण है, उसको भागवत पुराण बोलते हैं, भक्तों की लीला। तो भक्त मतलब भगवान और भक्तों का संबंध, भक्त अकेला नहीं होता है, भक्त आए तो भक्त शब्द बनता है भज सेवायम, संस्कृत में धातु भज सेवायम, तो सेवा करना, भक्त क्या करते, किसकी सेवा करते, भगवान की सेवा करते। तो इसलिए भागवत में ये हमें मूल, जैसे हम लोग अभी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बहुत सारे धर्म धर्म अलग अलग धर्म है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि धर्म का मूल सिद्धांत कहां पर है, स्रोत कहां पर है। तो जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं कि जितने भी सारे व्यंजन है पकवान है वो मसालों का मिश्रण है, लेकिन वो मसाला कहां से आता है वो उन्हें पता नहीं है, है ना। उसी तरह जितने भी धर्म है जितने भी संप्रदाय है वो सारे संप्रदाय वो सारे धर्म भगवान से उद्भूत होते हैं, भगवान के आदेश ही उसमें है, वो हमें मूल सिद्धांत समझना है, वो भागवत में मिलेगा हमें। और इसलिए मैं बता रहा था कि धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी, विश्वरूप जब भगवान दूत बन के आए थे, दुर्योधन ने जब उनको बंदी बनाने का प्रयास किया तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो उस समय सारे लोगों ने देखा विराट रूप। यहां तक कहा गया है कि धृतराष्ट्र को भी वो अंधा था फिर भी लेकिन विश्वरूप दिखा था, लेकिन उनको परिवर्तन नहीं हुआ। संजय से भगवत गीता सुना, यहां पर अर्जुन का शोक नष्ट, मोह स्मृति लब्ध प्राप्त हो गया, और अर्जुन को धृतराष्ट्र को अभी तक मोह नष्ट नहीं हुआ, स्मृति भी नहीं प्राप्त हुई। इसलिए विदुर जी आए, विदु यानी विदु उरज, संस्कृत में एक शब्द है, विदु यानी ज्ञानवान, जो उत्कृष्ट ज्ञानवान है, जिसके पास उत्कृष्ट प्रकार का ज्ञान है उसको विदुर कहते हैं। तो विदुर जी के माध्यम से धृतराष्ट्र को वैराग्य प्राप्त हुआ, फिर वो जाकर जो है हस्तिनापुर का आसक्ति छोड़कर समाधि योग में प्रवेश कर लिए। तो भगवान हमेशा भक्तों को श्रेय देते हैं, क्योंकि भगवत गीता से चाहे तो उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित कर सकते थे भगवान, संजय के माध्यम से हो या उपदेश विराट रूप के माध्यम से, लेकिन वो श्रेय देना था विदुर को। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों को श्रेय, जैसे चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, कहा जाता है कि वो जिसको भी स्पर्श करते थे वो व्यक्ति हा कृष्ण 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 करने लगता था, और वो जो कृष्ण कृष्ण कर रहा है अगर वो दूसरे को स्पर्श करता था वो भी कृष्ण कृष्ण करता था। वो जब मछुआरे ने भगवान को पकड़ा था तो मछुआरे की पत्नी को जब स्पर्श किया तो वो भी कृष्ण कृष्ण करने लगे। तो इस तरह से पूरा जैसे बीमारी फैलती है ना, प्लेग या और कोई बीमारी, संसर्ग बीमारी स्पर्श करने से फैलती है, तो ऐसे बीमारी 500 साल पहले फैली थी तो प्रभुपाद जी को यहाँ प्रचार करने जाने की आवश्यकता क्या रहती थी, अभी तक तो सब लोग भक्त बन गए होते है कि नहीं। 500 साल पहले अगर, अभी तक स्पर्श हुआ ही रहेगा ना सबके, जैसे एड्स है, एड्स कहीं साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ, अभी तक भारत में सब दुनिया के कोने कोने में आ गया कुछ ही सालों में, 10 साल में। जो 500 साल पहले जो बीमारी फैली थी हरे कृष्ण प्रेम की या चैतन्य महाप्रभु के जो भविष्यवाणी के हरिनाम की, वो तो अभी तक हमारे हमें लग गई होती, लेकिन वो श्रेय प्रभुपाद जी को देना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, वो चाहते थे सब लोग को भक्त बना देते थे 500 साल पहले ही, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे भक्त को इसका श्रेय जाए, शील प्रभुपाद की। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि एक सेनापति आएगा मेरा, जो मेरे नाम का पृथ्वी आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी, मैं सब जगह पे मेरा प्रचार करेगा। तो ये भगवान की महानता है। तो इससे हम क्या निर्णय लेते हैं, भगवान बोल रहे भगवान सबके प्रति समान है, और एक जगह में बोल रहे अहम भक्त पराधीना, डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो बोल रहा हूं समोहम सर्वभूत, सबके प्रति समान पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन यहां स्थापित कर दिया कि नहीं मैं भक्त के पराधीन हूं भाई, मैं पक्षपात ही करता हूं, मेरे लिए वही ठीक है, क्योंकि भक्ति के मैं अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान जो है पक्षपात करते नहीं करते, हाँ कौन बोलते, कितने लोग बोलते हैं करते हैं, करते हैं, और कौन बोलते नहीं करते हैं, अचिंत वेदावत, कुछ भी उत्तर नहीं मिला तो अचिंत वेदावत, और कुछ भी लीला समझो नहीं तो भगवान की लीला है, मतलब बोलते हैं भक्त हुआ ऐसे, प्रभु जी ऐसा क्यों हुआ, भगवान की लीला है। राम जी सीता के पीछे क्यों पागल हुए, क्यों रोए, भगवान की लीला है। तो यही है कि भगवान जो है भक्त के अधीन है। तो मैंने पिछली बार एक बार कहा था, ये फिर से मैं दोहराऊंगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को फल फूल अर्पण किया जाता है तो भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं, है ना। तो मान लो अगर आपको कोई पानी देंगे तो आप पी लेंगे, कुछ खाना देंगे तो खा लेंगे, अगर मैं आपको फूल दूंगा तो क्या करेंगे आप, खाएंगे सूंघेंगे। लेकिन जीव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान फूल भी खा लेते हैं, क्योंकि प्रेम से दिया तो वो गलती से ये नहीं देखते कि खाने की चीज है या सूंघने की है, खा लेते हो। अष्टनामी बोल दिया है ना, अष्टनामी मतलब मैं खाता हूं, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से प्रदान करता है मैं उसको अष्टनामी खाता हूं, पीवा में नहीं बोले, पीता हूं नहीं बोले, खाता हूं बोले, जिंगरा में भी नहीं बोले, जिगरा में बोलते थे वो, बोले खाता हूँ बोल दिया। तो भक्त देते हैं तो खा लेते हैं भगवान गलती से। तो ये भगवान के भक्त वशित्व, इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि एवं भगवतः सर्वत्र साम्यपि भक्त वश्यत्वम विशेषत्व। बोले कि हालांकि आप सर्वत्र सब जगह में सबके जीवों के प्रति समान है, फिर भी भक्त वश्यत्वम विशिष्टत्व, आपके अंदर विशेष गुण है कि आप भक्त वशीभूत है। इति प्रहलादेन ज्ञापित्वम, यह प्रहलाद ने जान लिया है। इसलिए प्रहलाद यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, सिर्फ मेरे प्राणों की रक्षा के लिए नहीं, आप जो है अपने भक्तों के वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट होते हैं, और आपके भक्त नारद मुनि जो है वो साक्षात मेरे गुरु भी है, और आपके नित्य स्वभृत्य है, निज भृत्य है, तो उनकी आप वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। इति मन्ने। तो यहाँ हम विराम देंगे, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं, भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ उनकी शक्ति से चलते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं ना। पूरा महाभारत उनका ही करणी है, पूरा महाभारत रचा उन्होंने। और महाभारत में मिला क्या, हम देखेंगे महाभारत में क्या निष्कर्ष निकाला, कि बहुत सारे हिंसा हुई ना, राज्य का भोग कौरवों को मिला ना पांडवों को मिला, हिंसा ही हुई, पूरा दुख 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 सब जगह में। लेकिन क्यों रचा, ये दिखाने के लिए भक्त मेरे अधीन में है और मैं भक्तों के लिए कुछ भी करूंगा। भीष्मदेव को चक्र उठाकर मारने गए, चक्का इसका पहिया। एक अच्छा कहानी आता हूं, मैं 2 मिनट में बताऊंगा। महाभारत में कथा आती है, जब भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की दुर्योधन के सामने कि मैं कल जो है मेरे पास जो 5 बाण है विशेष बाण, उस 5ों बाणों से मैं पांडवों को मार दूंगा। और ये बात रातों रात पूरे छावनी में फैल गई। तो यहाँ पर द्रौपदी बड़े दुखी हो गई, और यहाँ कृष्ण हंस रहे थे। बोले देखो क्या हंस रहे भाई, मैं कल विधवा होने जा रही हूँ, तुम हंस रहे हो। तो बोले कि छोड़ो कल की बात है, वो बात पुरानी हो गया, तुम मेरे साथ में चलो भीष्मदेव के पास। तो भीष्मदेव के पास आए और बोले, रास्ते में बोले देखो वो तो तुम्हारा जूता है ना, वो राजकुमारी का जूता है, वो अगर देखा देखेंगे कोई तो पहचान लेंगे कि तुम द्रौपदी हो, वो मुझे दे दो। तो उन्होंने लेकर अपने पीताम्बरी में छुपा लिया यहाँ पर, और वो पीछे पीछे चले, द्रौपदी आगे गई, और वहाँ पर भीष्मदेव बैठे थे मौन में, चुपचाप आँख बंद कर ध्यान में। तो द्रौपदी गए उनके चरण छुए, तो शायद भीष्मदेव को ऐसा भ्रम हुआ कि दुर्योधन की पत्नी लक्ष्मण आई होगी। तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भवा, जैसे सौभाग्यवती भवा तो द्रौपदी ने अपना मुखड़ा उठाया, बोले दादाजी मैं सुभद्रा द्रौपदी हूँ। बोला अच्छा तुम हो, तो दूसरा कहाँ है? बोले तुमको जो लेके आया वो कहा, समझ गए वो किसका चाल है। तो वो भी पीछे छुपे ही थे, भगवान आ गए सामने, बोले आपने तो वरदान दे दिया अभी। हाँ सौभाग्यवती, बोले वो बाण निकालो 5 बाण, अभी अब इसका काम नहीं है आपका। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते, भक्त वशीभूत है किसी भी प्रसंग में। पूरा महाभारत उन्होंने यही सिखाया कि मैं किसी भी समय में अपने वचनों को, हालांकि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा करके प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन भगवान ने अस्त्र शस्त्र उठाकर, भीष्मदेव को अस्त्र उठाकर जो है अपना वचन तोड़ दिया। एक भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए जो है अपने स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़, इसलिए वो बोल रहे कौन्तेय प्रतिजानी में न मे भक्त प्रणश्यति। मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो शायद मैं तोड़ दूंगा कहीं ना कहीं, लेकिन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो शायद मैं भक्त के वशीभूत हूं, इसलिए मैं तुम्हारे वचन को सच्चा साबित करूंगा। ते भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति। हरे कृष्णा। यस हाँ, ऐसे वो लीला है। देखिए ये जो गृहस्थ जीवन इतना दुखदायी है कि भले कोई कितने भी सुंदर पत्नी कितने भी बड़े राजा क्यों ना हो, ये दुख जो है ये हमारे जो भौतिक जगत में जो कर्म है हमारा, हमको भोगना ही है, हम किसी भी स्तर पे क्यों ना हो। लेकिन हाँ, हालांकि भगवान एक उनको दुख नहीं है, लेकिन वो एक मामूली एक सामान्य मनुष्य की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो सामान्य मनुष्य इसी तरह से जो है एक गृहस्थ जीवन में दुखित होता है, विरह में हाँ, या अपने स्वजनों के प्रति आसक्त होता है, तो वो लीला कर रहे हैं। और ये भी सिखा रहे साथ में, आसक्त नहीं होना ऐसे भी नहीं सिखा रहे, वो सीख रहे कि एक पति का कर्तव्य भी है कि पत्नी की रक्षा करना। ऐसे नहीं कि पत्नी चली गई ठीक है मैं निष्ठुर अच्छा भजन कर लूंगा अभी, नहीं, पति का कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा करे। एक जिम्मेदार आदर्श पुरुष, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा दिखाया कि एक राजा कैसे होता है, एक पति कैसे होता है, एक समाज का प्रतिनिधि कैसे होता है, सारी भूमिका भगवान ने अदा की है। तो एक पति या एक व्यक्ति का जिम्मेदारी सिर्फ एक समाज के प्रति, राजा के जिम्मेदारी, एक प्रजा के प्रति नहीं होकर अपने घर के प्रति भी है, यह भी शिक्षा भगवान दे रहे, यह मैं समझता हूं। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की। कुछ गलतियां हो तो क्षमा कीजिए।